नमस्कार, सांची विरासत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपकी फेवरेट आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। कभी आपने किसी ऐसी कला के बारे में सुना है जो नायाब भी हो, बेशकीमती भी हो और बेहद पुरानी भी हो? आज हम उसी कला की बात करने वाले हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न कलाओं व संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। सभी प्रकार की कलाएं किसी न किसी रूप में इतिहास से जुड़कर अपनी गौरवशाली गाथा का बखान करती हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की ढोकरा कला भी इन्हीं कलाओं में से एक है। इस कला का दूसरा नाम गढ़वा कला भी है। ये कला प्राचीन होने के साथ साथ जरा असाधारण भी है। ढोकरा कला करीबन 5000 साल पुरानी एक नायाब कला है। ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। बस्तर जिले के कोंडा गांव के कारीगर ढोकरा मूर्ति पर काम करते हैं, जिसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक, जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, इसका उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग से ही मूर्तियां बनाई जाती हैं। ढोकरा, जिसे कुछ लोग ढोकरा भी कहते हैं, ये खोया मोम कास्टिंग विधि में बनाया गया एक कला का बेहतरीन सा शानदार सा दिलकश रूप है। इस तरह की धातु की ढलाई का उपयोग भारत में 5000 वर्षों से किया जा रहा है और अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। ढोकरा कारीगरों का उत्पाद आदम सादगी, करामाती लोक रूपांकन और जबरदस्त रूप के कारण घरेलू और विदेशी बाजार में काफी ज्यादा मांग है। ढोकरा घोड़े, हाथी, मोर, उल्लू, धार्मिक चित्र, कटोरे को मापने और दीपक ताबूत आदि की बहुत सराहना की जाती है। सिंधु सभ्यता के महेंद्रा शहर में पाई जाने वाली डांसिंग गर्ल या डांसिंग वुमन आइडल ढोकरा कला का ही प्रतीक है। जल्द से जल्द खो जाने वाली मोम की कलाकृतियों में से एक मोहनजोदड़ो के नृत्य करने वाली लड़की यानी कि डांसिंग वुमन आइडल है। तांबा आधारित मिश्र धातुओं की ढलाई के लिए खोई मोम तकनीक चीन, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, मध्य अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी पाई जाती है। इस कला में तांबा, जस्ता व रांगा आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन व रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। भराई काम के रूप में जाने जाना वाला ढोकरा खोई हुई मोम ढलाई की प्राचीन तकनीक का उपयोग करके पीतल को तराशने की एक बेहतरीन सी कला है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रचलित ये धातु शिल्प विभिन्न जनजातियों के भीतर अपने शुद्ध लोक रूपांकनों और आकृतियों में अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप को पाई जाती है। जैसे ही एक युवा जोड़ा एक नए जीवन, नई भूमिका और नए घर की उम्मीद करते हुए विवाह के पवित्र संस्था में प्रवेश करता है, किसी भी अन्य चीज से पहले आदिवासी देवता की एक विनम्र लेकिन सम्मानित छवि नए घर में स्थापित की जाती है। स्थानीय धातु शिल्पकार द्वारा निर्मित पीतल की मूर्ति बैतूल मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासी परंपरा और मान्यता का प्रतीक है। ढोकरा, जिसे स्थानीय रूप से भराई काम के नाम से जाना जाता है, खोई हुई मोम ढलाई की प्राचीन तकनीक के साथ पीतल को तराशने की एक बहुत ही शानदार और दिलचस्प कला है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में प्रचलित इस धातु शिल्प में विभिन्न जनजातियों और परंपराओं के साथ अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप मिलते हैं। हालांकि ढोकरा के काम में पिघली हुई धातु को सांचे में ढालना शामिल है। प्रत्येक टुकड़ा अद्वितीय है क्योंकि हर टुकड़े के लिए उसका अपना सांचा बनाया जाता है। प्राकृतिक मोम और सरस का मिश्रण एक प्रकार का गोंद, गाढ़ा पेस्ट जैसे गाढ़ा होने तक उबाला जाता है और एक छलनी के माध्यम से दबाया जाता है ताकि धागे जैसे बारीक नूडल प्राप्त हो सके। प्राकृतिक मोम की अनूठी संपत्ति इसे ठंडा होने पर लचीला बनाए रखने की अनुमति देती है, इसलिए उसे बहुत छोटे आकार में घुमाया और लपेटा जा सकता है। मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण का उपयोग करके एक आधार रूप बनाया जाता है। इसके ऊपर मोम के धागों को अंतिम टुकड़ों के वांछित आकार में लपेटा जाता है। कभी सर्पल, कभी क्रॉस रची, कभी कभी सपाट सतह में चिकनी मोम के धागों की बनावट धातु अंतिम स्वरूप को निर्धारित करती है। इससे पहले कि हम ये जाने कि ये कला क्या है, इसके बारे में और जानकारियां हासिल करें या इसके बारे में हम ये समझ सकें कि इस कला में कैसे कैसे चीजें जरूरी जरूरी शामिल हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि इस कला का इतिहास क्या रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, 5000 वर्ष पुरानी है ये कला, यानी कि 5000 वर्षों का एक स्वर्णिम ऐतिहासिक सफर। तो चलते हैं उसी सफर पर। अगर हम बात करें ढोकरा आर्ट की, यानी ढोकरा शिल्प की, तो धातु ढलाई सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मूर्तिकला तकनीकों में से एक और प्राचीन काल से प्रचलित है ढोकरा कला। वह विधि जिसमें पत्थर के खोखले हिस्से को तराश कर एक सांचा बनाया जाता है, उसमें आदम युग के मजबूत संकेत हैं, जब आधुनिक तरीकों का आविष्कार हुआ ही नहीं था। ऐसा माना जाता है कि इस उद्योग की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बस्तर और छत्तीसगढ़ में हुई थी, बाद में झारखंड और बिहार में भी फैल गई, बाद में यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में भी फैल गई। पश्चिम बंगाल डोकरा उद्योग में सबसे लोकप्रिय नामों में से अभी एक है। 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा की प्रसिद्ध डांसिंग वुमन खोई हुई मोम ढलाई की सबसे पहली ज्ञात उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि इस तकनीक की उत्पत्ति लगभग 3500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। ढोकरा तकनीक से बने तांबे की दो आकृतियां गुजरात के प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल से खोदी गई थी। इंडो ग्रीक शैली में बनी मोम निर्मित कलाकृतियां और पहली शताब्दी ईसा पूर्व के युवा हाइपोक्रेट्स यानी मौन के देवता की एक मूर्ति तक्षशिला स्थल से खुदाई में मिली थी। भगवान नटराज की प्रतिष्ठित कांस्य प्रतिमा, जो कि 8वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी और आदमचल्लूर तमिलनाडु में खोजी गई माँ देवी की 3000 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा, दोनों ही खोई हुई मोम प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई थी, यानी वो बनाई गई थी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से। ढोकरा का उपयोग बड़े पैमाने पर मंदिर की मूर्ति, तेल के लैंप, बर्तन, गहने और बड़े हथियार बनाने में किया गया है। आधुनिक समय में ये धार्मिक समारोहों और परंपराओं में अपना स्थान पाता है। कई समुदाय में एक धार्मिक परंपरा के रूप में बेटियों की शादी की रस्म के हिस्से के रूप में जटिल रूप से तैयार किए गए दिए उपहार में जरूर दिए जाते हैं। 750 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व तक ये शिल्प भारत के विभिन्न क्षेत्र अर्थात राजस्थान, गुजरात, रायपुर, सारनाथ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फला फूला। 1500 ईसा पूर्व और 1850 ईसा पूर्व के बीच की अवधि के दौरान शिल्प में दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व बरकरार रखा। इस शिल्प का अभी भी मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम भारत में उड़ीसा, बिहार और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल के आदिवासी लोगों द्वारा उत्साह पूर्वक पालन किया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों का शिल्प इस ऐतिहासिक आर्ट से संबंधित है। आदिवासी कारीगर परिक रूप से शिल्प का अभ्यास करने में शामिल रहे हैं। जनजातियां अर्थात सरगुजा से मलार, रायगढ़ से झारा, बस्तर से घड़वा, टीकमगढ़ से स्वर्णकार और बैतूल से भरेवा, सभी ने इस शिल्प को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसकी सुंदरता को बरकरार रखा जा रहा है अभी भी। सरगुजा, टीकमगढ़, बस्तर और बैतूल में की जाने वाली ढलाई की मूल विधि लगभग समान है। सरगुजा उपलब्ध कच्चे माल में अंतर के साथ साथ पर्यावरण में अंतर के कारण अमूमन ये सामान्यतः एक तरह ही है। जब मध्य प्रदेश का केंद्रीय राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यों में विभाजित हो गया तो ढोकरा कारीगर द्वारा बसाई गई अधिकांश भूमि छत्तीसगढ़ में चली गई। प्रदेश था हस्तशिल्प विकास निगम ने राज्य में शिल्प को जारी रखने के लिए बैतूल में ढोकरा सुविधा शुरू की। आज कई शिल्पकार बड़े बाजार के लिए पारंपरिक वस्तुओं के साथ साथ व्यावसायिक कलाकृतियां बनाने के लिए इस सुविधा में इस जनजातीय कला रूप को सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। ढोकरा यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, इसमें सुंदर पैटर्न बनाने के लिए मोम के तार को कुंडलित किया जाता है। प्राकृतिक मोम ठंडा होने के बाद भी अपनी लचीलेपन को बरकरार रखता है, जिससे यह कुंडलित आकृतियां और लघु पैटर्न बनाने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है। सर्पिल, आड़े तिरछे या सपाट सतह पर चिकने, इन मोम धागों की बनावट धातु उत्पाद के अंतिम स्वरूप को निर्धारित करती है। माना जाता है कि मवेशी घंटी इस तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती है। सबसे पुरानी वस्तु यही मानी जाती है। कुछ गोंड द्वारा इसे भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि घंटी की मधुर ध्वनि पशुपालन का प्रतीक है, जो समृद्धि का प्रतीक है। ढोकरा शिल्पी, ढोकरा शिल्पकार अक्सर पीतल यानी कि तांबा और जस्ता और कांस्य यानी तांबा और टिन का इस्तेमाल करते हैं। यदि टिन की मात्रा अधिक हो तो मिश्र धातु को बेल मेटल कहा जाता है। मिट्टी के बर्तनों के शिल्प में विपरीत जहां परंपरागत रूप से पहिया घुमाना पुरुषों के लिए आरक्षित है, ढोकरा काम में कोई प्रतिबंध नहीं है और इसे पुरुषों और महिलाओं द्वारा अभ्यास किया जा सकता है। बच्चे अनुकरण और निर्देश के माध्यम से आज भी ये शिल्प सीखते हैं, जिसे इसे अच्छी तरीके से या पूरी कोशिश की जाती है कि इसे संरक्षित किया जा सके। ढोकरा शिल्प में उपयोग किए गए डिजाइन यथार्थवादी रूपों और आकृति और स्थानीय लोगों की आध्यात्मिकता की अमूर्त सौंदर्य अभिव्यक्तियों का मिश्रण है। इस कला के माध्यम से जनजातीय मिथकों, जादू और प्रकृति से प्रेरित डिजाइन का रूप दिया जाता है। सतह अलंकरण इन ढले हुए धातु उत्पादों का एक महत्वपूर्ण पहलू है और कारीगर अभी भी पुराने रूपांकनों का उपयोग करते हैं, जो समय के साथ और अधिक परिष्कृत हो गए हैं। इनमें से अधिकांश रूपांकन का आकार गोलाकार या रैखिक है और अलंकरण मोम की संरचना पर किया गया है। मोम के धागों का उपयोग करके बनाए गए विभिन्न रूपांकन जैसे चक्री, रस्सी, लहरें, जिगजैग, ये सभी शामिल हैं। जबकि रूपांकन कम है, शिल्पकार विभिन्न प्रकार के नए पैटर्न प्राप्त करने के लिए रूपांकन के विभिन्न संयोजनों का उपयोग करते हैं, जो डिजाइन में समृद्धि जोड़ता है और कला को और नायाब बनाता है। ढोकरा आर्ट, इसको कहा जाता है कि ढोकरा आर्ट इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्राइबल बिलीफ, यानी कि ये जो ढोकरा कला है, ये जो ढोकरा शिल्प कला है, ये आदिवासियों की एक प्रतीक है, आदिवासियों की पहचान बना है। राज्य अपनी समृद्ध कला और शिल्प के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विविधता के बारे में बहुत कुछ बताता है। नाजुक बुनाई से लेकर उत्तम कलाकृति एक अच्छी श्रृंखला तक, अतुल्य भारत का दिल कई प्रतिष्ठित शिल्प और प्रतिभाशाली कारीगरों से समृद्ध है, जो अनगिनत उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए अपनी आत्मा और दिल दोनों जोड़ देते हैं। ढोकरा एक ऐसी ही आकर्षक कला है जो राज्य में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। ये बैतूल जिले में स्थानीय आदिवासी समुदाय द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। ये एक अलोह यानी लोहे के अलावा धातु मोल्डिंग शिल्प है, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का उपयोग करके बनाया जाता है। बैतूल के भरेवा समुदाय गोंड की एक उप जनजाति अभी भी आसपास के गांव जैसे आमला, टिगरिया, बरखेड़, चुनाहजुरी और कमलेशरा में इस शिल्प को बेहतर बनाने और समृद्ध करने के लिए अपने सभी प्रयास कर रही है। अपनी संस्कृति से जुड़े हुए कलाकारों ने पारंपरिक रूप से दूल्हे द्वारा पहना जाने वाला खंजर, दुल्हन को उसके माता पिता द्वारा उपहार में दिए गए तेल के लैम्प और आदिवासी देवताओं के लिए सहायक उपकरण जैसी औपचारिक वस्तुएं बनाई। जनजातीय समुदाय के बीच शिल्प से जुड़ा सबसे लोकप्रिय अनुष्ठान नवविवाहिता को उनकी नई यात्रा के लिए आशीर्वाद देने के लिए घर में देवता को स्थापित करना है। सरल से लेकर जटिल तक आज कारीगरों ने नवीन डिजाइन और रूपांकन के साथ शिल्प को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कई नए तरीके खोज लिए हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी कहता है, जो आमतौर पर प्रकृति और आदिवासी मान्यताओं से प्रेरित होती है। इसलिए ढोकरा का प्रत्येक टुकड़ा कीमती, सुंदर, अलौकिक और अद्वितीय है। ये तो हमने जान लिया कि ढोकरा आर्ट क्या है, कैसे आई, क्या रहा है इसका ऐतिहासिक सफर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है। अक्सर हम देखते हैं कि जो कला हमारे सामने दिखती है, वो उसके पीछे की मेहनत कितनी है, ये हमें पता नहीं चल पाता। तो आइए जानते हैं कि इस नायाब कला यानी ढोकरा आर्ट, जो कि 5000 साल पुरानी कला है, इसको बनाने के में कितनी मेहनत लगती है और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। कई सारे रिस्क भी इसमें होते हैं, मगर फिर भी आज लोग इसे संरक्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं। ढोकरा कार्य में प्राकृतिक मोम और सारस का गोंद मिश्रण शामिल होता है, जिसे गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए उबाला जाता है और बारीक धागे बनाने के लिए छलनी के माध्यम से दबाया जाता है। प्राकृतिक मोम की अनूठी संपत्ति लचीलेपन की अनुमति देती है और धागों को छोटे आकार में आसानी से मोड़ने में मदद करती है। अंतिम प्रक्रिया शुरू करने के लिए कलाकार मिट्टी और गाय के गोबर का मिश्रण लेकर उससे एक आकृति बनाते हैं। फिर अगले चरण में मोम के धागे को उसके चारों ओर लपेटा जाता है। अब मिट्टी की लेप की एक और परत लगाई जाती है और टुकड़े को पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसे कुछ देर तक पकने के लिए भट्टी में रखा जाता है और भट्टी का टेम्परेचर करीब 13,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अंत में बाहरी मिट्टी को हटा दिया जाता है और ढोकरा की उत्कृष्ट कृति का अनावरण किया जाता है, यानी रिवीलिंग दिस मैजेस्टिक मैजिकल आर्ट, ढोकरा आर्ट। ढोकरा यानी कि डोकरा। ढोकरा कला प्रणाली एक जटिल और समय लेने वाली है। बहुत ही ज्यादा समय इसमें लग जाता है। कभी कभी तो एक मूर्ति को बनाने में 2-3 महीने लग जाते हैं और कभी कभी 6-7 महीने तक का समय लग जाता है। सबसे पहले कलाकार तालाब से लाल या सफेद मिट्टी इकट्ठा करते हैं और मिट्टी के सांचे बनाते हैं। उसके बाद संरचना बनाने के लिए मिट्टी को हाथ से बनाया जाता है। मोम तेल संरचना पर लागू होता है। अंत में मुलायम मिट्टी दी जाती है। इसके बाद उसे जला दिया जाता है। नतीजा मोम गले में एक छेद के माध्यम से बाहर निकलता है। उसके बाद पिघले हुए पीतल को डाला जाता है और जमने पर मूर्ति को एकत्र कर दिया जाता है। प्रतिमा को तब रगड़ रगड़ कर कागज से निकाला जाता है। मिट्टी का पेस्ट खोखले मोम और मोल्ड के रूप में बनाया जाता है। दामारा ओरिएंटलिस पेड़ से गोंद, छत्ते से शहद और अखरोट के तेल से बना मोम मिट्टी के ढेले में डाला जाता है। तुरंत मोम एक खिलौना आकार में बदल जाता है जिसे हमने सोचा था। यदि हम उस धातु को भंग कर सकते हैं जिसे हम इस खोखले सांचे में चाहते हैं तो धातु का खिलौना बनाया जाता है। बस्तर ढोकरा गुड़िया ज्यादातर पीतल के बने होते हैं। गर्म धातु तरल मोल्ड में डाला जाता है। मिट्टी की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है और मूल धातु के खिलौने को पॉलिश कर दिया जाता है। ये बस्तर ढोकरा गुड़िया इनको बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय है। खोई हुई मोम की ढलाई यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। इसकी मुख्यतः 2 प्रक्रियाएं हैं, ठोस ढलाई और खोखली ढलाई। जबकि पूर्व भारत के दक्षिण में प्रमुख और बाद वाला मध्य और पूर्वी भारत में अधिक आम है, बल्कि ढालना बनाने के लिए मोम का एक ठोस टुकड़ा खोखली ढलाई अधिक पारंपरिक पद्धति है और मिट्टी कोर का उपयोग करती है। ठोस विधि दक्षिण में लोकप्रिय है। मध्य और पूर्वी भारत में गुड़िया पद्धति का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठोस रूप में मिट्टी के बजाय मोम का उपयोग करके मोल्ड बनाया जाता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग पारंपरिक रूप से खोखले में किया जाता है। यूं तो भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न कलाओं और संस्कृतियों का समावेश देखने को मिलता है, और ऐसी ही प्राचीन कला है जो कि 5,000 वर्ष पुरानी है, जिसे हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस यानी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनी ढोकरा आर्ट। इतिहासकारों के अनुसार ढोकरा कला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी बनाई जाती थी, जिसका साक्षात उदाहरण हम डांसिंग आइडल से जानते हैं, वही जिसका जिक्र अभी मैंने किया था। ढोकरा कला का जन्म प्राचीन आदिवासी कलाकारों के द्वारा ही हुआ जो अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे, जो पहाड़ों के आसपास पेड़ों के नीचे टोलियां बनाकर रहा करते थे। इन स्थानों पर इन घुमंतू जातियों के लिए आवश्यक परिवेश और पर्याप्त दीमक की मिट्टी, रेत, लकड़ी आदि सामग्रियों से भरपूर होने की वजह से वे ग्राम के मुखिया के द्वारा संरक्षण दिए जाने पर उन्होंने स्थायी बस्तियों का निर्माण किया और स्थायी रूप से ढोकरा कला पद्धति में मूर्तियां बनाकर जीवन यापन करने लगे। ऐसा कहा जाता है, सुनने में भी आया है कि यही घुमंतू जनजातियां जो आदिवासी जनजातियां हैं, ये इन मूर्तियों के बदले अनाज लेती थी, बाजार में आती अपनी मूर्तियां अनाज के बदले बेच देती। आज वर्तमान समय में ये कला बस्तर जिले के कोंडा गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। यहाँ से मूर्तियाँ बनाकर विदेशों में भी भेजा जाता है। एक कहानी से ज्ञात होता है कि ढोकरा कला झिटकू और मिटकी नामक प्रेमी युगल से संबंधित है, जो हीर रांझा और लैला मजनू की तरह एक प्रेमी जोड़ा था। इन कलाकारों व उनकी कलाकृतियों की वजह से छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। ये कला पूरे भारत में अलग अलग समुदाय में उनकी परंपरा और संस्कृति को दर्शाने के लिए जानी जाती है। ये प्रचलित प्राचीन कला है जो आज भी प्रचलित और काफी प्रसिद्ध है। इस पद्धति में मूर्तियां बनाने के लिए काफी समय और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। ढोकरा कला में किसी सांचे और मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, जैसा कि अभी हमने इसकी प्रक्रिया को जानते वक्त जाना था। इनका निर्माण कलाकार के हाथों के द्वारा ही किया जाता है। पूरी की पूरी प्रक्रिया में किसी मशीन या किसी तरह के सांचे का उपयोग नहीं किया जाता, सब कुछ हस्त निर्मित होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है दस्तकारी। ढोकरा कला में किसी सांचे और मशीन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इनका मुख्य विषय आदिवासी आकृतियां हैं। इसी के साथ सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा पौराणिक कथा व लोक कथाएं भी हैं, तथा हाथी, घोड़ा, ऊंट, कछुआ, वृषभ एवं खजूर के वृक्ष से लेकर रामायण महाभारत की आकृतियों को भी देखा जाता है। आज इसे इस प्रकार ढोकरा ढलाई तकनीक से अद्वितीय और सुंदर धातु कलाकृतियां बनती हैं, जो आज भी कलाकारों और कला प्रेमियों को मोहित करती हैं। कुछ समकालीन कलाकार जैसे मीरा मुखर्जी इस मूर्ति शिल्प से विशेष रूप से प्रभावित है, जो अपने मूर्ति शिल्प के माध्यम के रूप में इसका प्रयोग करती हैं। ढोकरा कला में मेटल, मोम, मिट्टी, जली हुई मिट्टी, रेत वाली मिट्टी, लौह मिट्टी से बनी घड़िया क्रूसिबल, जिसे हम क्रूसिबल कहते हैं, जिसमें मेटल को रखकर पिघलाया जाता है, मोम से धागा बनाने वाली मशीन तथा लकड़ी के बने कुछ टूल्स आदि सामग्री का प्रयोग किया जाता है। धातु पिघलाने के लिए लकड़ी, कोयला तथा गोबर के उपले का उपयोग किया जाता है। साथ ही ईंट का प्रयोग भी भट्टी बनाने के लिए किया जाता है। इन सामग्रियों का प्रयोग करके ढोकरा शिल्प का स्वरूप दिया जाता है। ढोकरा कला यानी कि ढोकरा आर्ट, जिसे कई लोग ढोकरा भी कहते हैं, कुछ लोग ढोकरा कहते हैं और कुछ लोग इसे भरेवा कला भी कहते हैं। ढोकरा आर्ट, ये जो शिल्प है, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है मोम छह विधि और धातु शोधन का एक असीम संयोजन माना जाता है। इस पद्धति में ढोकरा कला ढलाई विशेष रूप से तीन प्रमुख चरणों में की जाती है, ढांचा बनाना, मोम से सजावटी नक्काशी और पॉलिश करना। इस पद्धति में सांचे का उपयोग केवल और केवल एक ही बार किया जाता है और निर्माण के बाद तोड़ दिया जाता है, जिससे ये कला दुनिया में अद्वितीय अर्थात अपनी तरह की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कला बनकर रह जाती है। एक किलो शुद्ध मधुमक्खी वाले मोम बनाने के लिए एक लोहे के पात्र में पहले लोबान 200 से 250 ग्राम अच्छी तरह गलाया जाता है। पूरी तरह से गलने के बाद उसमें एक किलो मोम मिलाया जाता है। उसके बाद उसमें मोम को और अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए 250 ग्राम मोमबत्ती वाली मोम यानी सफेद मोम मिलाया जाता है। मोम की और अधिक मात्रा बढ़ाने के लिए 100 ग्राम या 150 ग्राम डामर मिलाया जाता है तथा कुछ मात्रा में तेल भी मिलाया जाता है, लगभग 150 ग्राम। फिर गर्म करके तरल बनाया जाता है और उसके बाद पानी से भरे टप में सूती कपड़े के माध्यम से छान लिया जाता है और उसी टप में कुछ समय तक ठंडा होने दिया जाता है। फिर उसे पानी से बाहर निकाल कर हल्का गर्म कर लिया जाता है। उसके बाद हाथों में हल्का तेल लगाकर मोम को अच्छे से गूंथा जाता है और एक सेवई बनाने वाली मशीन, जिसे हम कहते हैं वैक्स नूडल मशीन, जो कि कई लोगों ने उनके दादा परदादाओं से हासिल की है, उसके जैसा कोई भी मशीन जिससे सेवई की तरह मोम का धागा निकाला जा सके, उससे मोम के धागे बना लिए जाते हैं। काफी मेहनत वाली कला है ये। इसके बाद भट्टी बनाया जाता है। भट्टी बनाने के लिए सर्वप्रथम एक ड्रम लेते हैं और उसमें नीचे से 10 या 15 सरिया की जाली बनाते हैं। फिर बाहर से और अंदर से मिट्टी के गारे से ईंट की जुड़ाई कर देते हैं। इसके बाद लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले को भट्टी में रखने के बाद उसी भट्टी में घड़िया यानी क्रूसिबल में धातु भर के रख दिया जाता है और उस भट्टी में आग जला दी जाती है। जब धातु गलने तक दूसरी भट्टी में मॉडल को भी पका लिया जाता है। इसके बाद सरसी से मॉडल निकाल कर धातु का तरल घोल डाल दिया जाता है। इस तरल को उठाने के लिए स्टील की कटोरी को कुछ समय तक गर्म करके सरसी से पकड़कर धातु का तरल निकाला जाता है और मॉडल में डाल दिया जाता है। सर्वप्रथम भूरी चिकनी मिट्टी में भूसा और पानी मिलाकर गूंथा जाता है। फिर इस गुथी हुई मिट्टी से मूर्ति का आकार, जिसे हम मॉडल कह रहे हैं, उसको तैयार किया जाता है। अब उस मॉडल के ऊपर मोम का एक पतला परत लगाया जाता है। उसके बाद मोम के धागे को राउंड राउंड कर लपेटा जाता है। फिर लकड़ी के टूल्स के माध्यम से हल्का दबाते हुए प्लेन कर लिया जाता है। इसके बाद मोम के धागे से ही मॉडल के ऊपर मनचाहा डिजाइन तैयार कर दिया जाता है। अब इस डिजाइन के ऊपर भूरी मिट्टी और जली हुई मिट्टी को मिलाकर सूखे में ही पीसने के बाद चाल लिया जाता है और उसमें पानी मिलाकर गीला करते हुए मॉडल के ऊपर मोटा लेप हल्का दबाते हुए लगा दिया जाता है, ताकि मिट्टी पूरी तरह से डिजाइन को कवर कर ले। मॉडल के निचले हिस्से में थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, वहां मिट्टी का लेप नहीं लगाया जाता है। फिर अच्छे से सूखने के बाद बिना मिट्टी के लेप वाली जगह से एक चौनल लगा दिया जाता है, जो मोम का ही बना होता है। फिर भूरी मिट्टी में भूसा पानी मिलाकर गूथी गई मिट्टी से मोम के डिजाइन के ऊपर लगभग आधा इंच मोटा एक परत लगाया जाता है, जिस जगह से चैनल निकली हुई होती है उस जगह पर मिट्टी का ही घोल कुप्पी नुमा चाड़ी से बनाया जाता है और इसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद 3 या 4 पतली कील ठोक दी जाती है ताकि मोम जब पिघल कर बाहर निकल जाए तो मोम के नीचे वाली मिट्टी को मॉडल और मोम के ऊपर वाली मिट्टी को परत आपस में सटने न पाए, जिससे तरल धातु को भरने के लिए थोड़ी जगह बनी रहे। फिर एक तरफ भट्टी में इसे पकाया जाता है और दूसरी तरफ धातु को घरिया यानी क्रूसिबल में रख कर गलाया जाता है। मॉडल में गोल लगी चाड़ी को भट्टी के नीचे की ओर रख कर पकाया जाता है ताकि मोम पिघल कर बाहर निकल जाए। पकने के बाद उसे एक सरसी की सहायता से मॉडल को बाहर निकाल लिया जाता है और तुरंत लगी गोल चाड़ी के रास्ते तरल धातु को डाल दिया जाता है। अब उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। लगभग 20 मिनट के बाद हल्का पानी डाल डालकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। हल्का गर्म रहते ही मिट्टी का लेप तोड़ दिया जाता है और मूर्ति तैयार हो जाती है। फिर ब्रश और रेती से साफ कर लिया जाता है। इसके बाद चाहे तो पॉलिश या कलर भी कर लिया जाता है। देखा कितनी ज्यादा मेहनत और मशक्कत वाली है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, और एक मूर्ति बनाने में बहुत सारा समय लग जाता है। लॉकडाउन में कई आदिवासी शिल्पकारों ने ढोकरा आर्ट के काम को छोड़ दिया, लेकिन अब फिर से लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट रही है। शिल्पकार धीरे धीरे ढोकरा शिल्प को बनाने में जुट गए हैं। कई संस्थाओं की मदद से और जिला प्रशासन लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है, जिससे इस कला को राजेंद्र ने दोबारा से जीवित किया जा सके। और मास्टर के तौर पर स्थानीय लोगों के साथ साथ तेलंगाना से आए 18 शिल्पकार को शिल्प बेहतर बनाने और आर्ट की बारीकियां जानने के लिए तेलंगाना के शिल्पकार इलाके में बेहतर तरीके से इस प्रशिक्षण कार्य को किया जा रहा है। तेलंगाना से आए शिल्पकार दिलीप जंगर ने बताया कि तेलंगाना में सैकड़ों आदिवासियों की निर्भरता ढोकरा आर्ट पर ही है। पुश्तैनी समय से परिवार ढोकरा आर्ट की मूर्तियां बनाते आ रहा है, लेकिन बस्तर के ढोकरा आर्ट की मूर्तियों में शाइनिंग कहीं और नहीं देखने को मिलती है। तेलंगाना जिले के कलेक्टर ने बस्तर में ढोकरा आर्ट की कला और फिनिशिंग की बारीकियां सीखने के लिए तेलंगाना के कुछ शिल्पकारों को बस्तर भेजा। उनका कहना है कि उनके 17 सदस्य और पहुंचे हुए हैं और बस्तर के शिल्पकार उन्हें बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन सब के बावजूद कुछ ऐसा है जिससे ये कला थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और कुछ चुनौतियां भी हैं। यूं तो कई सारी चुनौतियां हर कला को देखने को मिलती हैं और वो कई चुनौतियों से गुजर कर तब हम तक पहुंचती हैं, मगर कुछ ऐसी चुनौतियां होती हैं जो उन्हें धीरे 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 लुप्त होने पर मजबूर कर देती हैं। ढोकरा कारीगरों के अनुसार वर्तमान में इन कारीगरों की सबसे बड़ी समस्या है GST। नए टैक्स प्रणाली का पालन कर पाना मुश्किल है और इसके कारण इनके द्वारा निर्मित मूर्तियों की बिक्री लगभग आधी से कम हो गई है। वर्तमान बाजार में इस कला के पारंपरिक स्वरूप को बदल दिया गया है। मधुमक्खियों से प्राप्त मोम, जो कि इस कला की प्राथमिक आवश्यकता थी, अब उसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह इतनी महंगी हो चुकी है कि इसे खरीदना आसान ही नहीं है। पारंपरिक पशु मूर्तियों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट और ऐसे ही अन्य मूर्तियां धीरे धीरे पेपर वेट्स, पेन होल्डर, मोमबत्ती होल्डर जैसे अधिक कार्यात्मक चीजों द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही हैं। शिल्प की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कच्चे माल की बढ़ती कीमत है। कच्चे माल की कीमत बहुत अधिक होने के कारण कारीगर सस्ते विकल्पों को मिलाकर इसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं और इससे तैयार उत्पाद की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा धातु की ढलाई समाप्त होने के बाद विभिन्न प्राकृतिक अशुद्धियां जैसे घास, धूल के कण आदि मोम के साथ मिलकर पिन होल निशान और आसमान सतह बना लेते हैं। एक ओर इस चिरस्थायी जनजातीय शिल्प को अपने शुद्ध लोक रूपांकनों और आकृतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कच्चे माल की बढ़ती कीमतें इस कला के अस्तित्व के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। फिर भी अनुष्ठान उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के साथ कारीगर अपनी लोक सौंदर्य संवेदनाओं का उपयोग करके शहरी अंदरूनी हिस्सों के लिए सहायक उपकरण और सजावटी सामान भी बनाते हैं। इस प्रकार समकालीन पृष्ठभूमि के खिलाफ आदिवासी कला का अद्भुत स्पर्श देते हैं। यूं तो ये कला बहुत ही नायाब है, एकमात्र है, अद्वितीय है, अलौकिक है, मगर फिर भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। G7 समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने ढोकरा आर्ट को अपने समकक्ष सभी G7 के मेंबरों को बांटा था और इसी से ये कला एक बार फिर से लोगों की नजर में आ गई थी। आप खुद देखेंगे जब ये कला यानी ढोकरा आर्ट से बनी मूर्तियां, तो आप खुद देखकर सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई जोड़ नहीं होता है। ये बिना जोड़ के बनाई जाती है और बहुत ही मेहनत और मशक्कत से बनाई जाती है। शिल्प कौशल दुनिया भर के कई कला और शिल्प प्रेमियों को प्रेरित कर रहा है, न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि विश्व स्तर के बाजार में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। इसने कई प्रदर्शनियों में स्थान पाया है और विदेशों में कई हाई स्ट्रीट स्टोर की शोभा बढ़ाई है। इसीलिए जैसे कि हम कहते हैं, जब आप मध्य प्रदेश में हो तो आप कुछ सुंदर स्मृति चिन्ह लिए बिना राज्य नहीं छोड़ सकते हैं। दीपक, घंटी, फोटो फ्रेम, जानवरों की आकृतियां और बैलगाड़ी जैसी पीतल की धातु की मूर्ति आदर्श स्मृति चिन्ह बन सकती है और इस खूबसूरत राज्य की याद दिलाने के लिए शोपीस के रूप में टेबल पर खूबसूरती से रखा जा सकता है। शायद यही एक तरीका हो हमारे और आपके स्तर से इस कला को सहेजने का। धन्यवाद।